आप सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। स्वागत तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें इस विशाल आयोजन को करने की हिम्मत दी, शक्ति दी, संकल्प दिया। क्योंकि जब हमें इस आयोजन का संकल्प हमने किया तो सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हम आयोजन करेंगे, या हमारे में यूं कहें कि यह संकल्प भी नहीं था कि हम इतने बड़े आयोजन की हिम्मत भी रख पाएंगे। लेकिन ये संकल्प जो है स्वयं उस परमात्मा के द्वारा दिया गया, ये उसी की ही प्रेरणा है और उसी की ही प्लानिंग है और उसी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसे सर्वप्रथम हम आज की इस सभा में उस निराकार परमपिता परमात्मा और उनके माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, उन दोनों का आज की सभा में आह्वान करते हुए मंच के ऊपर स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उसके साथ साथ जो भी हमारे भाई बहने आज की सभा में बैठे हैं, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, मिडिल एज हैं, मैं सभी का बहुत 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 दिल से पुनः पुनः स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
ज्योति जगा, ज्योति जगा, विश्व शांति की ज्योति जगा।
नमस्कार। मुझे अभी, वैसे ब्रह्मा कुमारी जी ने मुझे प्रसन्न रहना सिखाया, लेकिन आज प्रश्न पूछने के लिए बुला लिया। तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे पैनल में हमारे आमंत्रित मुख्य भाई बहनों को, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो आपके बिहाफ पर मैं उनसे पूछूंगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न है हमारी सतबीर भाई जी से, मैनेजर हैं एमटीएनएल में। अक्सर पब्लिक डीलिंग में भी होते होंगे, आपने सुना है कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत आती है। कुछ लोग पब्लिक आपके पास आते होंगे, आप सबको राजी कैसे करते हैं? गुस्सा या क्रोध थोड़ा थोड़ा तो चलता है, या कैसे लगता है आपको? लगता है कि उनको संभालने के लिए प्यार की जरूरत है, या कभी आप भी इरिटेट हो जाते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और ये केवल यूथ ही नहीं, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि किसी भी काम को करने में आप जितना प्यार से करेंगे उतना वो काम अच्छे से होगा, और गुस्सा करने से कभी भी काम बनता नहीं है और ही ज्यादा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, या जो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज मिलती है, वो सारी बातें हमें बहुत मदद करती हैं कि हम सब कुछ करते हुए अपने फोकस को कैसे ठीक रख सकते हैं। और जब हम अपने आप में फोकस्ड होंगे तो हम दूसरों से भी जब इंटरेक्शन करते हैं या दूसरे भी हमसे किसी बात को लेकर के बात करते हैं, तो आप जितना फोकस्ड हैं उतना आप उसका एक्सट्रैक्ट समझ पाते हैं, और अगर आप उस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उसका उसी लेवल से सॉल्यूशन उसको दे पाते हैं। और जब आप इस प्रकार से अपना सॉल्यूशन देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे और ज्यादा सेटिस्फाई होकर के जाता है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है।
ठीक, तो हमारी मोनिका बहन से मैं पूछता हूँ, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, कई बार ओड आवर्स में भी आना पड़ता है, बीइंग अ वूमेन, महिला होने के नाते, युवा होने के नाते, आप में उमंग भी है, लेकिन आजकल जैसे वर्तमान भारत या खासकर दिल्ली की हालत देखें, कहीं इनसिक्योरिटी महसूस होती है आने में जाने में, लोग भी पेरेंट्स भी कहते हैं माहौल ठीक नहीं है, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए आपको ये मेडिटेशन कहीं मदद करती है?
दिल्ली जो शहर है वहाँ इनसिक्योरिटी या महिलाओं के लिए कहा जाता है कि इट्स नॉट वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ महिलाओं को रहना चाहिए, तो अगर वो लिस्ट निकाला जाए शहरों में भारत में विशेष करके, तो सबसे पहला शहर जो अब आप आज तक है वो है दिल्ली, कि दिल्ली में विमेन्स आर कम्प्लीटली इनसेफ करके बोला जाता है। लेकिन जैसे कि भैया ने कहा कि हाँ, हम सब लोगों में विमेन में जो है वो कहते हैं कि हमारे अंदर उमंग भी है कि कुछ कर दिखाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर पे बैठ के ही रहे। लेकिन जो चीज मुझे पर्सनली जो मुझे फील होती है, जो हमारी रक्षा करती है, वो ये नहीं कि पुलिस कुछ करेगी या आपके पेरेंट्स कुछ करेंगे, वो कहाँ तक कर पाएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी धारणाएं जो होती हैं वो आपकी सच्ची रक्षक है। तो पहली चीज इंटेंशन आती है, और दूसरी चीज हमारा कर्म जो है, कहते हैं कि अंत समय में या किसी भी बुरे वक्त में जो है काम जो आता है, आपके अच्छे कर्म काम आते हैं। तो मेरा कहना यही है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने कर्मों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं, और दूसरी चीज आपकी श्रेष्ठ धारणाएं। तो ये दो चीजें आई फील इट हैज रियली प्रोटेक्टेड मी। और रही बात एग्जाम्पल्स की, मतलब मैंने जम्मू कश्मीर तक अकेले ट्रैवल किया है मेरे वर्क की वजह से, छत्तीसगढ़ बीजापुर जो कि माओस्ट एरिया कहलाता है, मेरे वर्क की वजह से मैं वहां भी ट्रैवल कर चुकी हूँ। रात के 1 बजे तक कई बार ऑडिट्स होते हैं तो वहां आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा मन में कभी ऐसा डर लगा हो या किसी से ऐसा कुछ हुआ हो, कभी नहीं होता। मतलब इट्स मोर अबाउट कि नारी को जो शक्ति रूप कहा जाता है, वो शक्ति जो नारी के अंदर आती है, वो जो शक्ति रूप दुर्गा माँ को दुर्गा कहा जाता है, जिसके आगे हर कोई नमन करते हैं, वो दुर्गा के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति उसके ज्ञान योग बल के कारण कहा जाता है। तो वो धारणा है, आई थिंक इट ऑलवेज
ठीक। ये प्रश्न अभी इसी का रूप बदल के मैं दोबारा आपके पास यही प्रश्न लेके आऊंगा। हमारा अगला प्रश्न हमारे आदरणीय अनूप ठाकुर जी से है, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, करना, उसको कार्यान्वित करना। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन कई बार लॉ और ऑर्डर नहीं होता, लॉ से लोग और डर जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जनता की भी क्या भागीदारी है? क्या केवल पुलिस या जो डिपार्टमेंट्स हैं जुडिशरी, वो इस समाज में शांति ला सकती है, या जनता भी उसका सहयोग देना चाहिए, या कैसे हम इसमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें?
जैसा कि इन्होंने मुझसे ये पूछा कि जनता की भागीदारी, जो लॉ एंड ऑर्डर या जो भी हम कानून बनाते हैं या कानून इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें जनता की भागीदारी क्या होनी चाहिए, कि कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूं कि जनता की भागीदारी क्या हो सकती है, या हमारी डे टू डे वर्किंग में हमें क्या हेल्प मिलती है। जैसा कि मैं पहले कुछ प्रश्न से शुरू करूंगा कि आप कैसे लोगों से डील करते हैं, क्या होता है। हम एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जैसे आपको पता है कि 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी यही है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो हम लोगों का जो गवर्नमेंट सर्विस में जो हम लोग हैं, हमारा जो काम है या कोई कानून बनाना है या कानून क्रियान्वयन करना है, उसके लिए एक पार्लियामेंट के रूप में हमें एक संस्था दी गई। उस पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए सारे लोग दिए गए। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ अलग हैं, अलग से अपने आप को एक कैटेगराइजेशन कर रखा है। बट लोगों की भागीदारी के लिए एक प्लेटफॉर्म होना भी जरूरी है कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा पार्लियामेंट में या बहुत अदर प्लेटफॉर्म में असेंबलीज में व्यक्त की जाती हैं, तो वो जो उनकी भावनाएं हैं या जो जनता की भावनाएं वही वहां पे भी बोली जाती हैं या वही चीजें वहीं रखी जाती हैं। हमारे देश में नित नए कानून बनते हैं, इतने कानून हैं कि लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई कानून भी है। बहुत सारे कानून बहुत पुराने चल रहे हैं, हमें लगता है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून चल रहे हैं। यहाँ कुछ पुलिस के लोग बैठे हैं, सीआरपीसी आईपीसी जब अंग्रेजों के जमाने तब भी चल रहे थे, बट ये कानून ऐसे हैं कि जो समय के साथ साथ चेंज भी होते गए हैं। चेंज कैसे आया है? चेंज बदलाव आया है जनता से, कि जनता को क्या रिक्वायरमेंट है। हम लोग जैसे कहीं बैठे हैं या जनता के पब्लिक के साथ जो डील कर रहे हैं या पब्लिक के साथ बातचीत करते हैं, तो उसी इंटरेक्शन के कारण या उसी जो एक प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि जो हमने कानून बना रखे हैं उनमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। समाज में है अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तो वैसे ही कानून भी अच्छे, कुछ कानून अच्छे भी बनेंगे, कुछ कानून बुरे भी बनेंगे। किसी भी कानून को बनाने के पीछे इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं बट उसका दुरुपयोग भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था उसकी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी बट उसके मिसयूज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इंडिया में ही मिसयूज हो रहा है बट कुछ जगहों पे उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो हमारा जो कानून बनाना, उसको क्रियान्वयन करना, ये जनता की भागीदारी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमें जो इम्प्लीमेंट करना है, जो हमने बनाया, अगर हम उसको बिना जनता की रिक्वायरमेंट के, जो चीज की जरूरत नहीं है, जो समाज में है ही नहीं चीजें, या कोई ऐसी नई चीज शुरू कर देंगे जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है समाज को, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है। हो सकता है भारत जैसे देश में जहां 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, 40% पीपल होंगे जो उसके फेवर में नहीं होंगे। अब हमें उसको क्रियान्वयन करना है। कानून बना दिया, ऐसा नहीं है कि जो आपकी कुछ लोगों की सजेशन होंगी एक्सट्रीमिस्ट होंगी, कुछ बोलेंगे नहीं इसको माइल्ड रखा जाए, कुछ बोलेंगे उसको राइटिस्ट रखिए, कुछ बोलेंगे लेफ्टिस्ट रखिए, कुछ बोलेंगे ऐसे रखिए। तब उसको क्रियान्वयन कैसे करना है? कोई भी कानून का क्रियान्वयन जब तक उसमें जनता की
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल,
ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से।
आपकी कुछ लोगों की सजेशन होंगी एक्सट्रीमिस्ट होंगी, कुछ बोलेंगे नहीं इसको माइल्ड रखा जाए, कुछ बोलेंगे उसको राइटिस्ट रखिए, कुछ बोलेंगे लेफ्टिस्ट रखिए, कुछ बोलेंगे ऐसे रखिए, तब उसको क्रियान्वयन कैसे करना है? कोई भी कानून का क्रियान्वयन जब तक उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, जहां तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ 7-8 साल की सर्विस में बता पा रहा हूं कि कोई भी कानून है, कोई भी आप एक्ट बना लीजिए, कोई भी रेगुलेशन बना लीजिए, जब तक उसमें जनता की भागीदारी नहीं होगी उसका क्रियान्वयन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इसमें जैसे ये बता रहे थे कि लॉ एंड डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करने के लिए डर की भी जरूरत है, उस डर की भी जरूरत है। डर इस चीज से नहीं है कि डर उस एक्ट का डर है, उसका डर होना चाहिए या किसी और चीज का, डर इस चीज से भी होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये डर होना चाहिए। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर है, डर नहीं है कि उससे डरना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आजादी से बैठे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशंस है, हम सब कुछ बोलते हैं, बट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, हम सब लोगों की कुछ ड्यूटीज भी हैं। अगर हम यही चाहेंगे कि हमें सिर्फ आजादी मिली रहे, हम सब कामों को करने के लिए फ्रीडम मिली रहे, ड्यूटी कोई नहीं करनी पड़े, तो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हमारे देश में या यहाँ कुछ लोग जो लोग बैठे हैं, आई एम श्योर कि जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया पहले भी किया है, 80% लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज का पता नहीं है, 90% लोगों को फंडामेंटल राइट्स का पता है। राइट्स का पता है, ड्यूटीज का पता नहीं है।
आपने सही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए है जो मान रहे हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए लॉ और डर है, मतलब डर जायज है।
डर जायज है।
तो मैं अगला क्वेश्चन अभी हमारी अनुसुईया दीदी से पूछता हूँ कि युवाओं का, आप यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली में, बहुत वर्षों से आप युवाओं के लिए कार्यरत हैं सेवा में उनकी। एक ऐसा समय है कि आज सभी आंखें लगाए युवा की ओर भी देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा परेशान भी युवा से ही है, बच्चे बूढ़े सब युवा की ओर देखते हैं। आज जो युवा जोड़ तोड़ में लगना चाहिए तोड़ फोड़ में लगा हुआ है, हिंसात्मक कार्यवाही में लगा हुआ है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देंगे? क्या हम अन्याय का विरोध ना करें या क्या करें?
ओम शांति। जैसा कि हम समझते हैं कि युवा एज जो है इसमें बहुत शक्ति होती है, अगर हम जीवन के चारों पहरों को देखें, बचपन, फिर युवा, फिर उस पर व्यस्क और उसके बाद बुढ़ापा, तो इसमें जो सबसे अधिक शक्ति होती है वो युवा एज में होती है, एम आई राइट? लेकिन वो जो शक्ति है उसका जो उपयोग किस तरह से कर रहे हैं उस पर ही उस शक्ति का बढ़ना या कम होना हो जाता है ना? आज अब देख रहे हैं हमारे युवाओं के पास जो शक्ति है, जैसे भैया ने बताया कि वो विध्वंसक कार्यों में लगे हुए हैं, है ना? शक्ति है लेकिन उसका सदुपयोग होने के बजाय उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनको यही बताना चाहते हैं कि जो चीज हमारे पास है अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो जरूर उनको उसका जरूर नुकसान हो भी रहा है। आप देखो, ऐसा नहीं है कि माँ बाप ही बच्चों से परेशान हैं, बच्चे खुद भी अपने आप से बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हम उनको 2-4 बातें अवश्य बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा जीवन है इसमें हमें अपने जीवन को, जो हमारा सबसे अच्छा जरूरी पीरियड ऑफ लाइफ है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, जो युवा एज में अपने आप को ठीक से समझ पाते हैं, वो आज हमारे बीच पे ये युवा भी हमारे साथ हैं, वो अपने जीवन को ऐसा सुदृढ़ और ऐसा समाज सेवा के लिए और अपनी पर्सनल सेवा के लिए भी अपने आप को सफल बना पाते हैं। लेकिन अगर नहीं बनाते हैं, अगर उस वक्त युवा एज में अपने समय को गवाते हैं तो उनका पूरा लाइफ फिर पश्चाताप और दुख से ही बीतता है। माँ बाप भी परेशान होते हैं और वो खुद भी परेशान होते हैं। तो एक आवश्यक बात जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है, मैं भी बचपन से लेकर इस ब्रह्मा कुमारीज में आई और आज बहुत अच्छी तरह से युवाओं को मैं देख रही हूँ कि एक जीवन का जो एक सुंदर साइकिल है उसको उल्टा कर लिया है। और वो साइकिल है, बचपन से लेकर अध्यात्म ने और एकेडमी ने हमें एक संदेश दिया और वो है अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज। और आज का युवा लेट टू बैड एंड लेट टू राइज करके अपनी शक्ति को बिल्कुल खत्म कर रहा है। तो पहला संदेश मैं युवाओं को ये देना चाहूंगी कि अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज, जो बचपन से लेकर एकेडमी ने हमको ये संदेश दिया और अध्यात्म ने भी ये संदेश दिया, इस पर पुनः हम विचार करें, ये साइकिल को दोबारा से हम ठीक करें, क्योंकि उसका रिजल्ट बताया गया है, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और लेट टू बैड एंड लेट टू राइज का हम समझ सकते हैं क्या होगा रिजल्ट, और वो हम देख रहे हैं, अनहेल्दी, नॉट वेल्दी एंड नॉट वाइज। दूसरी बात जो युवाओं के अंदर जो नजर आती है, जो भैया ने कहा कि आज का युवा उन्होंने अपना पॉजिटिव लाइफस्टाइल को छोड़ करके नेगेटिव लाइफस्टाइल जो बनाया हुआ है उसमें विशेष रूप से जो उनका खाना है, संग दोष है, उसके अंदर भी जो पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधा अनुकरण है, ये उनके लाइफ को बहुत खराब कर रहा है। हमारी इंडियन जो सभ्यता है, हमारा भारतीय सभ्यता है, उसकी गरिमा कितनी महान है। तो आज युवाओं से हमारा ये विशेष कहना है कि आप सभी अपनी इंडियन जो हमारी भारतीय सभ्यता है इस पर गौर करें, और उसके साथ साथ जो हमारे सभी जो समाज में अपनी शक्तियों को क्षीण करने का कारण है, एक तो संग दोष और बुरा खान पीन, उसमें बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं, आज के बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अनेक प्रकार के और व्यसन जिनका मैं यह नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, तो उन व्यसनों की वजह से इतनी जो शक्ति आज युवा के अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। इसलिए हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि इस पर भी विशेष ध्यान दें। और तीसरी बात, आज का युवा सशक्त तो है लेकिन कुछ एक दो कमजोरियों की वजह से अपनी शक्ति को बिल्कुल खत्म कर रहा है, वो है अनहेल्दी कंपैरिजन। हर युवा जो आज कभी कभी सुसाइड करते हुए नजर आते हैं, डिप्रेशन में नजर आते हैं, बहुत बीमारियां हो जाती हैं, उसका कारण ये नहीं कि उनके अंदर शक्ति नहीं है, वो अपने लेवल पर अच्छे होशियार भी होते हैं। कई बार हमने देखा वो 90% प्राप्त करने के बाद भी डिप्रेशन में चला गया, तो कारण क्या हुआ? दैट वॉज नॉट सो बैड, मार्किंग को इतनी उसका रिजल्ट बहुत बुरा नहीं था, पर वो जो उसने कंपैरिजन कर लिया मेरे फ्रेंड के 94 और मेरे 90, ये जो अनहेल्दी कंपैरिजन किया, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होकर के अपने लिए भी अपने परिवार के लिए बोझ बन गया। तो इसलिए हम आपको ये संदेश जरूर देंगे कि हे युवाओं, ऑलवेज सी योर व्हाट यू हैव अचीव्ड, जो आपने जीवन में प्राप्त किया है आप उस पर नजर रखें, आपको जो नहीं मिला है आप उस पर नजर न रखें, अपनी मिली हुई चीज पर नजर रखेंगे तो जरूर आप और आगे बढ़कर जो आपसे आगे हैं शायद उनसे भी आप आगे चले जाएं, ये संदेश देना चाहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय अनुसुईया दीदी जी। अब हम अगले स्टेप में पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अनुभवों की बात। मैं हमारी वर्णिका बहन से पूछना चाहूंगा, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि जहां वैल्यूज की कोई वैल्यू रही, आज लोग वैल्यूज को ताक पे रखकर और धन और इन साधनों की वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यूज की भी कोई वैल्यू है? आज हम ईमानदारी, शांति, प्रेम, त्याग की बातें करते हैं, हमने किताबों में, लोग हमें यूथ आके कहते हैं ये किताबों में पढ़ने वाली चीज है, क्या ऐसा है? पढ़ना और करना अलग अलग है कि पढ़ना और करना एक साथ है? आपके कोई जीवन का एक्सपीरियंस, मैं चाहूंगा शॉर्ट में हो, लेक्चर ना हो, केवल अपना अनुभव हो कि आपने कभी ऐसा क्या लगा।
यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, खासकर की प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करते हैं, तो हम जैसे तराजू में रखते हैं कि वैल्यूज अपनाएं या क्या अपनाएं। वैल्यूज एक तरह से सीढ़ी है जो हमको जीवन में धीरे धीरे भले सही लेकिन ऊपर लेकर जाती है। लेकिन वैल्यूज ना अपनाकर जो हम, जो भाई साहब ने कहा, बाकी जो साधन है वैल्यूज को छोड़कर दूसरे साधन अपनाएं, वो एक लिफ्ट है जो हमें लगता है हम घुस जाएं तो ऊपर चढ़ जाएं, जो चलती नहीं है। तो उस लिफ्ट में अगर हम घुस गए तो क्या होगा, लिफ्ट बंद और हम फिर जीवन भर पछताते रहते हैं, सीढ़ी भी हाथ से गई और ऊपर भी हम नहीं गए,
ना नीचे ना ऊपर, बीच में
हम फंस जाते हैं। और ये अनुभव करने से पहले हम सीढ़ी पकड़ लें वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो वैल्यूज की बात कही, एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगी कि वैल्यूज अवश्य काम करती हैं। लोग ये समझते हैं कि भाई आप शांति से बात करेंगे तो, जैसे कि बताया कि मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, प्यार से बात करेंगे तो काम करेंगे नहीं, शांति से बात करेंगे नहीं काम करेंगे, आप तो सीधे सीधे राह पर चल रहे हैं लेकिन लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हैं तो क्या करें। अपने अगर हम वैल्यूज रखें तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती हैं। मान लीजिए एक बदबू भरे कमरे में मैं एक अगरबत्ती जला दूं तो अगरबत्ती को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो जल रही है, वो आसपास रहने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि ये खुशबू कहाँ से है। ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ आकर के मुझे कहते हैं कि हाँ जी ये काम आप ऐसे कर दीजिए, या किसी ने आकर के गुस्से से बात की। कई बार क्या होता है कि कुछ रिस्पॉन्ड कर देते हैं गुस्से में आकर या कुछ भी। अगर हम रिस्पेक्ट अपनी रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली आकर कहता है। शुरू में जब मैं भी आई ऑफिस में ज्वाइन किया तो कई चीजों में, क्योंकि हम सबसे जूनियर होते हैं हमें नहीं इतना आदर सम्मान दिया जाता, लेकिन जब हम आदर सम्मान से अपनी वैल्यूज को पकड़ के चलते हैं तो एक मौका ऐसा भी आया जब मेरे जनरल मैनेजर ने मुझे कहा कि आप जैसा डिटरमाइंड व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, तो जब तक हम दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो मूल्यनिष्ठ जीवन ही सच्चे जीवन की, एक अच्छे जीवन की निशानी।
मतलब वैल्यूज के कारण अप्रिसिएशन मिला, भले थोड़ा समय लगा। मैं अगला क्वेश्चन हमारे सतबीर जी से पूछता हूँ। जब आपको लगा कि वैल्यूज बड़ी टफ लगी लेकिन आप उस पे डिटरमाइंड रहे तो उसने आगे फ्रूट अच्छा दिया, कोई ऐसा इंस्टांस अगर आप बताएं अपने जीवन से।
जैसे आपने कहा कि जहाँ आपको ऐसा लगा कि वैल्यूज आपको टफ लगी, तो मेरा निजी अनुभव ये है कि नेचुरली वैल्यूज के साथ में अपना काम करना मुझे सबसे इजी लगा, और वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर के काम करना हमेशा ही डिफिकल्ट लगा। और ऐसा ओकेशन मुझे नहीं लगता मैंने कभी अनुभव किया हो कि जिसमें वैल्यूज को एडॉप्ट करना, क्योंकि आप अपने निजी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर देखें तो इंसान को सच बोलना आसान होता है या झूठ बोलना आसान होता है। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि वैल्यूज एक्चुअल में हमारा फाउंडेशन है, बेस है। अगर वैल्यूज है तो हम खड़े हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी सपोर्ट है। और वैल्यूज अगर हमारे में नहीं है तो हम कभी भी कहीं भी बह सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी ओकेशन पे। और फिर वहां पर अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी वजूद नहीं रह पाता है, कोई भी वजूद नहीं बचता है। तो वैल्यूज को साथ में लेकर के चलना सबसे इजी है। अगर हम सच्चाई की बात करते हैं तो सच बोलने के लिए हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर झूठ बोलना हो तो सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक झूठ के साथ 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। ये बात ऐसे नहीं हुई थी तो पिछली एक चेन क्रिएट होगी, उसके पीछे कोई दूसरी बात पूछ ली तो उसका एक और झूठ क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से करते करते हमें वो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। सच में कभी हमें कुछ भी
याद नहीं
करना नहीं पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने के टाइम पे हम हर चीज को कॉम्प्लिकेट करते 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 और लास्ट में क्या होता है, झूठ पकड़ा ही जाता है, सच्चाई हमेशा सामने आई जाती है। तो इसीलिए कहा कि झूठ का कोई वजूद नहीं है। उसी तरह से सभी वैल्यूज है, वैल्यूज की अपनी वैल्यू है और वैल्यू लेस होने का कोई वजूद नहीं। इसलिए हम कहते हैं वैल्यूज ही हमें वैल्यूएबल बनाती हैं और वैल्यूज से ही इंसान की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए आप देखो आज हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हम उनकी मूर्ति की क्यों पूजा करते हैं? आज के इंसान की तो कोई पूजा नहीं करता है। उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वैल्यूज है। तो वैल्यूज जितनी हम अपनी लाइफ में धारण करते हैं उतने ही हम वैल्यूएबल बन जाते हैं, ऐसा मेरा निजी अनुभव है।
मैं अगला क्वेश्चन हमारी मोनिका बहन से पूछता हूँ। आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस वैल्यू से रिलेटेड हो तो जरूर शेयर करें।
हमारी जो फील्ड है वो रिक्रूटमेंट की है, एचआर में, जैसे हम नए नए लोगों को ऑफिस में लाते हैं। तो रिसेंटली हमने हमारे डिपार्टमेंट में ही एक कलीग को रिक्रूट किया था। तो जैसे हमारे टीम में जितने भी लोग हैं वो बहुत काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो मतलब हमारी टीम एकदम यूनाइटेड है, मतलब जैसे मतलब बहुत आपस में बहुत अच्छा रहता। तो कोई नया मेंबर आता है तो जैसे कहते ना कि जब कोई नई बहू घर में आती है तो सास का काफी चलता है, तो उसी तरह से जब ये न्यू कलीग आई तो जैसे बहुत जल्दी, जैसे नए नए होते तो इतने जल्दी सीखते रहे, तो वो काफी कुछ नया नया गलतियां हो रही थी इधर उधर, तो काफी जो है उससे रिलेटेड काफी नेगेटिविटी हो रही थी, काफी लोग उसको सुना भी देते थे। तो उस बीच में मेरे को बस यही लगता था कि मुझे अपने दिन याद आते थे कि जब मैं नहीं आई थी तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स फेस होती थी। तो हमारे विश्वविद्यालय में एक चीज सिखाई जाती है जो आपने भी सुना होगा कि अगर आप किसी के अंदर अच्छाई देखोगे तो वो आप वाकई में उसके अंदर अच्छाई का पौधा बो रहे हैं। तो मैं इस विशेष धारणा को प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं वो जो भी कलीग मेरे से पूछती थी तो मैं उसको समझाती जाती थी, सिखाती जाती थी, एंड आई यूज्ड टू पुट दैट स्पेशल एफर्ट कि मैं इनको सिखाऊं, कोच करूं जितना मेरे से हो सकता है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने हमारी एचओडी को जाके कंप्लेन कर दिया कि ये जो नई रिक्रूट है इसको कुछ नहीं आता और इसको निकाल देना चाहिए। तो हमारी एचओडी ने हर एक से फीडबैक ले रहे थे, तो जब मेरे से भी पूछा तो मैंने बस इतना कहा कि हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए किसी को सीखने के लिए, और वो कर रहे हैं। तो इसी तरह से चलते रहे। तो अब वाकई में 3 महीने हो चुके हैं, और कल परसों की ही बात थी कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और एक कॉन्फ्रेंस में भी काफी कुछ उनका वो था, शी हैड टू स्पीक एंड ऑल, तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और फिर बॉस ने मुझे बुलाया और उसके सामने बोला कि पूरी टीम जो थी वो आपके अगेंस्ट थी, लेकिन ये एक थी जिसने कहा था कि आप अच्छा कर सकते हो। तो मैंने उस बात को माना, हमारी एचओडी ने कहा कि मैंने मोनिका की बात को माना क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कह रही है तो वाकई में कुछ होगा। तो कहने का भाव ये है कि वाकई में अगर हम किसी के अंदर अच्छाई देखते हैं तो वो अच्छाई आपके अंदर भी आती है और वो उसको एनकरेजमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये एक विशेष वैल्यू, आई थिंक इट रियली हेल्प्स मी।
बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका बहन। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। अब हमारी अनसुईया दीदी से मैं कहना चाहूंगा कि युवा सशक्तिकरण का मीनिंग क्या है, यूथ एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है?
ये हम भली भांति जानते हैं कि जो जितने भी साधन हैं वो हमारी सुरक्षा उतनी नहीं कर सकते जितनी हमारी अपनी जो पर्सनल लाइफ है और उसकी जो विशेष धारणाएं हैं। हम देखते हैं हमारी जितनी भी देवियां हैं उनके पास भले आज हम अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, लेकिन उनके भी हम कहानियां सुनते हैं तो उनके ऊपर जिन भी असुरों ने जब वार किया तो उनकी आंतरिक शक्ति ने उनको प्रोटेक्ट किया। ये कहानियां नहीं है, ये जीवन के बहुत सुंदर अनुभव है। तो अगर हमारे युवा, चाहे वो कन्याएं हैं चाहे कुमारियां हैं या कोई भी अपने को संसार में प्रोटेक्ट करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, तो सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अंतर मन से स्वयं को सशक्त बनाएं। तो सशक्त का मतलब जो पहले भी हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं कि हमारी अपनी निजी धारणाएं खान पीन के बारे में, सोच के बारे में, बोलने के बारे में और व्यवहार के बारे में। हम जहां पर भी जाते हैं बाहर भी अगर अपनी शालीनता में रहते हैं, अपनी ड्रेस को और अपने व्यवहार को बिल्कुल शालीन रूहानी बनाकर रखते हैं, तो जहां भी आप शॉपिंग करने जाते हैं या समाज में कहीं भी आपका आना जाना होता है जैसे मोनिका बहन ने भी कहा, रात को 1 बजे भी जाना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है तो कभी जाना भी पड़ सकता है। तो अगर इसका भी हम डेकोरम मेंटेन करते हैं कि किस वक्त हमें जाना है और किस वक्त हमें नहीं जाना है, ये संसार की जो हमें डिसिप्लिन दिए गए हैं इनका भी ध्यान रखना, ये भी हमारे लिए हमारी स्वयं की सुरक्षा का कारण होता है। तो ऐसे अगर हम पर्सनली हर बात का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित रखना ये हमारी अपनी आंतरिक जो शक्ति है उस पर आधारित होता है। तो मैं आपसे एक ये बात जरूर कहूंगी कि अगर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है तो यहाँ पर जो हम मेडिटेशन सीखते हैं हम उसका जरूर अभ्यास करें, हम ये जानें कि हम कौन हैं और किसके हैं। ये आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर हमको सशक्त करेगा। और लास्ट में सिर्फ मैं यही कहूंगी, है अंधेरे बहुत तुम उजाले बनो, है अंधेरे बहुत तुम उजाले बनो, डूबतों के लिए तुम किनारे बनो, है बेसहारे बहुत इस जहान में, है बेसहारे बहुत इस जहान में, हे युवाओं तुम सहारा न लो तुम सबके सहारे बनो, तुम सहारा न लो तुम सबके सहारे बनो।
परम पिता शिव के शिव शक्तियाँ
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
घर घर में होती है जिनकी पूजा,
चेतन में वो देवियाँ आ गई,
चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।